سورت لقمان نام سے ہی تھوڑی سی انیوژل سورت ہے. لقمان کوئی نبی نہیں تھے, لیکن جس طرح ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ صاحب فراست لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال کو حکیم امت کہہ دیا جاتا ہے, اسی طرح عرب لوگ لقمان کو ایک حکیم کے نام سے پہچانتے تھے, اور لوگوں نے گھروں میں ان کے کچھ صحیفے اور ان کے اقوال زرین وغیرہ رکھے ہوئے تھے. جب قرآن آیا تو اس کا بیسٹ آلٹرنیٹ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اس قرآن میں اس شخصیت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اسلام قرآن کے سوا دوسری چیزوں کا دشمن نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کی سچی تعلیمات جو ہیں اس سے کانٹراڈکٹ نہ کرتی ہوں. اس صورت میں بہت پیارے طریقے سے انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے, محسن بننا سکھایا گیا ہے, اور خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے اس میں بہت پیارے نقطے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا سیکنڈ رکوع جب پڑھیں گے تو آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کس طرح بچوں کی تربیت میں کن کن چیزوں کا کس عمر میں خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے. اس صورت کے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں تو 34 آیتیں ہیں ٹوٹل, مکی صورت ہے, چار اس کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک آیت 1 سے 9 تک, خدا حکیم کا کلام ہی حکیم ہے, یعنی قرآن حکمتوں بھرا ہے. آیت نمبر 10 اور 11 میں خالق اور رب کو واحد نہ ماننا ظلم ہے, اور پھر 12 سے 13 میں شکر اور توحید عدل, یعنی شکر اور توحید کا تذکرہ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ شرک کو ظلم کہا گیا. پھر آیت نمبر 13 سے 19 تک آپ دیکھیں گے حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو اپنے بچے کو کی, اور مختلف صفات کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 34 میں توحید کے اسبات اور شرک کے رد ہیں مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ پھر آخر میں شیطان کی بات ہے. پوری سورت کا جو تھیم ہے نا وہ شکر اور حکمت ہے. زندگی میں حکمت آ جائے اور شکر آ جائے, اسی سے توحید کا راستہ بھی ملتا ہے, اور توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے. یہ سورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دور میں نازل ہوئی تھی جب کہ سورت عنکبوت نازل ہوئی, اور بالکل مسلمانوں کو تھریٹ کیا جا رہا تھا, اور بچوں پہ اسپیشلی ینگسٹرز پہ بہت پریشر تھا. اس صورت میں بھی وہ آیت آ رہی ہے کہ جس میں صحابی مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دو. تو آج کے دور میں ہر وہ ینگ بچہ بچی جو دین پہ چلے اور اس کے ماں باپ اس کو روایات کے نام پہ یا خاندان کے نام پہ کچھ ایسے کاموں کے کرنے پہ مجبور کریں جو قرآن سنت سے ٹکراتا ہے, تو اس کے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اس سورت کا شروع سورت بقرہ سے ملتا ہوا لگے گا. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدم و رحمت للمحسنین. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں, ہدایت اور رحمت نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. حکمتوں بھری کتاب آپ کو کبھی غلط کام کرنے کا موقع نہیں دے گی یا دعوت نہیں دے گی. آپ شروع سے آخر تک بقرہ سے لے کر اب تک دیکھ لیجیے, کوئی ایک ہی مورل قسم کا حکم دیا قرآن نے؟ کوئی نیوڈیٹی کی بات کی؟ کوئی بے حیائی کی بات کی کہ یہ کیا کرو, بدتمیزی کرو, جاہل بنو, گنوار بنو؟ کچھ بھی تو نہیں. یہ ہے حکمتوں بھری کتاب. اور حقیقت ہے کہ یہ کتاب زندگی میں آتی ہے تو جینا آ جاتا ہے, لوگوں سے معاملہ کرنا بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کتاب سے دور ہیں. وجہ اب اگلا حصہ آپ بڑے غور سے سنیے گا. قرآن سے دوری کی وجوہات میں ایک وجہ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. حال کیا ان کا, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا. اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا خبر سنا دو ان کو ایک ایسے دردناک عذاب کی, البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ان 9 آیتوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو آپ کو کیا بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے حکمتوں بھرا کلام نازل کیا, لیکن لوگوں میں کوئی ایسا بد نصیب ہے کہ جو پیسے لگا کر ایسی چیزیں گھروں میں لے کر آتا ہے, خرید کر لاتا ہے کہ جس سے لوگ اس کتاب سے دور رہیں. لفظ یشتری کو ذہن میں رکھیے, خریدنا, ٹو بائے. کس کو؟ لہو الحدیث. یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے. جیسے اردو میں ہم لغو بولتے ہیں نا, لغویات, اسی سے لغو ہے. ایسی چیز جو بہت حقیر ہو لیکن اعلیٰ چیزوں سے آپ کو غافل کر دے. اور احادیث میں اس سے جو مراد ہے, گانا بجانا, قصے, کہانیاں اور ایسی چیزیں جو اپنے اندر انسان کو انوالو کر لے کہ نہ قرآن میں دلچسپی رہے, نہ نماز سے کوئی تعلق رہے, اور نیکی اور خیر کے کاموں سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو. اللہ کہتے ہیں پیسے لگا کر لوگ ایسے آلات خریدتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے کیا کچھ ہے. سب سے زیادہ خرچہ گھر میں کن چیزوں کا آتا ہے؟ بجلی کا بل زیادہ کیوں آتا ہے؟ مہنگے آلات کون سے ہیں؟ کن چیزوں کو لوگ زیادہ ڈاؤن لوڈس کرتے ہیں؟ کبھی گانوں کے البم تو دیکھیں, لاکھوں لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے. اور کتنی پیمنٹس دیتے ہیں, ایک ایک سی ڈی, ایک ایک کیسٹ کتنے کی خریدتے ہیں, ایک ایک فلم کتنے کی ہے, کتنے لاکھوں ڈالر لگا کر ایک ایک فلم بنتی ہے. لہو الحدیث. ابن عباس کہتے ہیں کہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, اس سے مراد غنا, غنا گانے کو کہتے ہیں. اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں کیونکہ یہ انسان کو اپنی طرف گم کر لیتی ہیں. صحیح ترغیب کی روایت ہے 3527, دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں, یعنی جن آوازوں پہ لعنت کی گئی. ایک خوشی کے موقع پہ گانا بجانا, اور دوسرا مصیبت کے وقت جزا و فضا کرنا, سینہ کو بھی چیخو پکار. ہم کہتے ہیں لو شادی کیسے سجے گی اگر ڈانس نہیں ہوگا اور لڑکے لڑکیاں ناچے نہ, مزہ ہی نہ آئے گا. اب آپ خود دیکھ لیجئے, یہ حدیثیں آپ کے سامنے, مجھے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ وہ حصہ جس پہ میوزک پہ کثرت سے بات کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ انسانوں کو سکھاتے ہیں, اسی نے ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے. ایسی چیزیں بندے کو غافل کرتی ہیں. اور ایک جیم لکھ لیجئے اس بارے کا, جہاں تک پھیلا دیں, موسیقی کے ساتھ قرآن ہضم نہیں ہوتا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کیلشیم کی گولی کھانی ہے تو کہتے ہیں چائے کے ساتھ نہ کھانا, اس کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. کچھ دو چیزیں آپس میں ریپیل کرتی ہیں نا, قرآن اور میوزک ساتھ نہیں چل سکتے. ایون آج جن لوگوں نے میوزک کو قرآن کے ساتھ پیش کر دیا, اسی لیے تو بے اثر ہو گئی عبادات بھی. یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یہ تو گرم اور ٹھنڈے کو جمع کرنے والی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل قرآن میں لگے تو اس کا آلٹرنیٹ اچھی آوازوں میں قرآن سنیں. آپ دیکھیے میرے پاس آپ آئے, میرا پسندیدہ شغل ہے یہ, 10 سے زیادہ قاریوں کے نام آپ کو لکھا دوں گی, سلو, فاسٹ, سیڈ, تھرل, یا جو بھی آپ کے نام ہے گانوں میں. کبھی آپ کا سلو سننے کو دل کرے تو ان کو سنیں, پیسفل سنیں تو ان کو سنیں, تیز سننا ہے تو ان کو سنیں. اتنی ورائٹی ہے الحمدللہ آج کے دور میں. پھر بھی اگر ایک انسان ان چیزوں میں پڑ جائے یہ اس کا نصیب ہے. اور قرآن پڑھنے پڑھانے سننے والوں کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنا وقت ان چیزوں میں لگا دیں, جس کے بعد کانوں میں سیسا پلائے جانے کی بھی باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی بڑی ہستی ہوں. خلق السماوات والارض خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. اس نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے زمین میں, اور آسمان سے پانی برسایا, اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اتنی پیاری کائنات نہیں دکھتی, اس مالک کے کارنامے نہیں دکھتے, اس سے متاثر نہیں ہوتے. اور کوئی چار بول بال بولے تو کہتے ہو میں فین ہوں, آئی ایم ڈائنگ فار ہم, میں تو اس کے لیے مر رہی ہوں, مجھے اس کا آٹو چاہیے, مجھے اس کا دھکا چاہیے, مجھے اس کا ہاتھ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. کن کن چیزوں کو بناتے ہیں. اسی ناروے میں 2 سال 3 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, یاد آ چکا ہوگا کچھ لوگوں کو, کہ کیسے ایک فارنر آیا تھا سنگر, اور ینگ لڑکیاں وہ دیواریں توڑ کر وہاں پہنچ گئی تھیں, اور کتنی مر گئی تھیں. شاید لفٹ میں کسی کا پاؤں آیا تھا اور کاٹنا پڑا تھا. جی کس کو دیکھنے کے لیے؟ جو 2 دن نہ نہائے تو بو آئے اس کے پاس سے, جس نے کبھی جس زبان نے کبھی لا الہ الا اللہ کہا نہیں. مجھے نہیں پتہ وہ کون تھا, واللہ میں جانتی نہیں, اسی لیے بول رہی ہوں. پتہ ہوتا تو نہ بولتی, ہمیں کیا پتہ وہ کون ہے. لیکن اس کے میٹھے بول سننے گئی تھیں نا عورتیں, یہ لڑکیاں, और मुस्लिम लड़कियों की खबरें आई थी अखबारों में कि हिजाबी लड़कियां भाग भाग के जाके उस जंगलों को तोड़ तोड़ के पहुंच रही हैं, तो अल्लाह से नहीं मुतासिर होते? कितना घटिया शौक है तुम्हारा, कितना बुरा। एक लफ्ज़ पढ़ो 10 नेकियां, एक लफ्ज़ तिलावत का सुना। आप देखिए एक आयत आप सुनते हैं ना अभी यहाँ बैठ के, घर जाके उसके लफ्ज़ गिनिएगा, वाला कद आते ना, एक एक लफ्ज़ पे 10 10 नेकियां। किस गाने को सुनने पे 10 नेकियां, एक लफ्ज़ पे 10 नेकियां। किसको पढ़ कर बाद में नेकियों के जज्बे उभरते हैं, किसको देखकर बंदे मोटिवेटेड होते हैं? जिन फिल्मों गानों को सुनकर और ही ज़्यादा गुम होने को दिल करता है कि अब तो और ही डूब जाऊँ नशे में किसी और चीज़ के, तो आप बताइए उन चीज़ों के अंदर नस्ल पड़ी हुई। आज अलामा इकबाल ने क्या कहा था, पहला मिसरा मुझे याद नहीं, दूसरा क्या, कि तौसु रबाब आखिर, आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। शमशीर व सना अव्वल तौसु रबाब आखिर, कहते हैं तुम चाहते हो कि उम्मतों की तकदीर किस चीज़ में लिखी है, तो ये गाने के और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ना लोगों को, बच्चों को पकड़ाओ, इनके हाथों में शमशीरें पकड़ाओ। और जब हमारे बच्चों के हाथों में ये आया, उसी वक्त से उम्मत बिगड़ गई। ये कोई आज की बात नहीं, ये 100 साल हो चुका है, इसी में खो गए। फिल्में, ओल्ड मूवी, फलां गाने, फलां, ये ज़िंदगी इसलिए आई थी। आपको 3 घंटे मिले कमरा इम्तिहान में, आपके मुझे 2 घंटे तो इसमें से गाने और फिल्में देखनी है, 1 घंटे में पर्चा हल करूँगी। तो ज़िंदगी के भी ये 3 ही घंटे हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। खुद सोच लें कि मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या करना है। कोई अच्छी सी नीयत करते हैं, 3 सेकंड तक गौर करते हैं। इसके बाद अब तरबियत औलाद के सिलसिले में, ये बहुत अहम रुकू है, इस पे लेक्चर्स भी हैं, इस पे पूरा सेमिनार मौजूद है। मैं इस पूरे रुकू को पढ़ूंगी और फिर इंशाल्लाह तरतीब के साथ आपको ही बता दूंगी। और आपको ख़ुद भी दिख रहा है कि बच्चों को बताते हुए क्या बात पहले बतानी चाहिए, क्या बाद में, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी हिकमत वाली तबलीग नहीं होती, जिसकी वजह से फिर बच्चे रिएक्शन में आ जाते हैं। हिकमत के साथ बात करेंगे तो फ़ायदा होगा। पहली चीज़ के वलकद आतैना लुकमान अलहिकमत अनिशकुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र गुज़ार हो। जो कोई शुक्र करेगा, इसका शुक्र करना उसके अपने हक में होगा, और जो कोई नाशुक्री करेगा तो उसका वबाल उसके ऊपर पड़ेगा, और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज है और आपसे आप महमूद है। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, सबसे पहले बच्चों को रब से जोड़ें। हक यह कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और यह हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। इसकी माँ ने जोफ पर जोफ यानी कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर इसे अपने पेट में रखा, और 2 साल इसका दूध छूटने में लगे, इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालदैन का शुक्र बजा ला, मेरी ही तरफ तुझे पलटना है, लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज़ न मान। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी इस शख्स की रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रजू किया है, फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुमको बताऊँगा जो तुम अमल करते थे। या बुनैया इन्नहा इन्तकुम इस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, और लुकमान ने कहा, बेटा कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में या ज़मीन में कहीं छुपी हो, अल्लाह इसको निकाल लाएगा, वो बारीक बीन भी है और बाखबर है। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई। और वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ना ज़मीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में इतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रख, और सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। देखिए क्या क्या बातें बच्चे को सिखा रहे हैं, बोलना, चालना, बात करना। आप देखिए कि इसमें तरतीब बहुत अहम थी। पहली बात है कि हिकमत क्या होती है, क्योंकि माँ बाप में हिकमत होगी तो बच्चों में भी आएगी। तो हिकमत होती है सही वक्त पर सही बात करना। गलत वक्त पर सही बात का फ़ायदा नहीं होगा और सही वक्त पर गलत बात का फ़ायदा नहीं होगा, इसको अच्छे तरीके से बात करने की ज़रूरत होती है। तो तबलीग में ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर लम्हे तुम फैसले कर रहे होते हैं क्या करें, किधर जाएं। बस आप देखिए कि खाना पका रहे हैं, हिकमत क्या है, नमक उतना ही डालें जितना डालना है, मिर्च उतनी डालें, भूनें उतना जितना भूनना है, उतना ही गोश्त को गलाएं जितना गलना है, ये हिकमत है। इसी तरह ज़िंदगी में भी लोगों के पास इल्म बहुत होता है, हिकमत नहीं होती। इल्म है, इस्तेमाल करना नहीं आता उसको, सिचुएशन सामने आती है, फेल होते हैं, सपारा खोलते हैं, सब कुछ याद आ जाता है। इम्तिहान का पर्चा जब ससुराली रिश्तेदारों की सूरत में आता है, सब भूल जाते हैं कि लोगों से कैसे डील करना था। तो विजडम, डिसीजन पावर और ये सारी चीज़ें, राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट ना कह देना, ये सब कुछ हिकमत में आता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि शुक्र की बात है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे अल्लाह के और आपके बन जाएं, एक जज्बा उनमें डाल दें, शुक्रगुजारी, बी थैंकफुल। जब आप किसी की शुक्रगुजार होते हैं ना, तो फिर आप उसकी हर बात को समझते हैं। जो लोग किसी की बात को अहमियत नहीं देते ना, असल में वो उसको अहमियत नहीं दे रहे होते। तो जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह की बात मानेंगे, आपका शुक्र अदा करेंगे आपका फ़ायदा होगा, आपकी मानेंगे। तो अगर मैं आप भी अगर अपने माँ बाप के साथ कोई नेकी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वी शुड बी थैंकफुल। लेकिन आजकल के बच्चे तो कहते हैं आप ना पैदा करते हमें, इट वॉज़ योर डिसीजन, हमने कहा भाई आपका मज़ा था, हमें क्यों रोका आपने, हमें तो नहीं आपने कहा था। आप देखिए किस हद तक ज़ुबानें खुल गई हैं, कि इस हद तक बच्चे कहते हैं कि आप हमें बिल्कुल ना पैदा करते, हमने कब कहा था कि आप हमें पैदा करें, तो फिर आप भुगतें। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दर्दा की रिवायत है, कि अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, ख्वा तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिरक न करना, ख्वा तुम्हें जला दिया जाए। क्या मतलब कि माँ बाप के कहने पर भी शिरक नहीं करना। और रिवायत में आता है जिस हाल में मरे कि अल्लाह को शरीक ठहराता था वो जहन्नुम में जाएगा। ये बुखारी की रिवायत है, जाके ख़ुद खोल के पढ़ ले 1238। इसलिए शिरक को पहचानना है, माँ बाप भी मजबूर करेंगे तो शिरक फिर भी नहीं करना। और ये जो आयात हमने पढ़ी है माँ बाप की फरमा बरदारी की, ये साथ भी नबी वक्कास के बारे में, जब ये मुसलमान हुए तो इनकी माँ ने कसम खा ली कि ना खाऊंगी ना पीऊँगी जब तक शिरक पे वापस ना आ जाओ। अब ये परेशान हुए कि इस्लाम तो माँ बाप की इतनी बात मानने को कहता है, तो ये तो मुझे ये कह रही हैं। तो ये नबी सल्लम के पास आए कि मेरे लिए क्या हुक्म है, तो आपने फरमाया तुम उनकी बात नहीं मानोगे। ये अदबुल मुफरत की रिवायत है 18 नंबर की। तो क्या पता चला, मुशरिक माँ बाप या बेनमाजी माँ बाप या बेदीन माँ बाप हो जाएं और औलाद दीनदार हो, तो फिर वो किस बात को मानेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की, लेकिन दुनियावी मामले में अच्छा रहें। जैसे आपने हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर को कहा, इनकी वालदा मुशरिका थी, मदीना में आई बेटी के पास कुछ मदद लेने, कहने लगी क्या मैं अपनी मुशरिका माँ की मदद कर दूँ, तो आपने कहा क्यों ना करो, ज़रूर करो, जैसे कोई माँ बेटी अपनी माँ के साथ करती है, यानी सिला रहमी करो, लेकिन बात नहीं माननी। ये बुखारी की रिवायत है 2620 नंबर की। तो बहरहाल इस्लाम हमें सिखाता है। फिर आप देखिए कि बच्चों को जो चीज़ सिखानी है वो तकब्बुर से बचना है, बढ़ाई का एहसास, ख़ुद उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना पहना कर और अच्छे जूते देकर और ब्रांडेड चीज़ें देकर हम सेल्फ कॉन्शियस कर देते हैं। हदीस में आता है राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये मुस्लिम की रिवायत है 276 नंबर की। तो अपने अंदर से भी तकब्बुर निकालना है दूसरों पर। एक चीज़ जिसकी आज बहुत ज़रूरत है और यहाँ देखिए बात की गई, वो बॉडी लैंग्वेज है, एटीट्यूड औलाद का ठीक करना चाहिए। ला तसर खद्दा कल नास, आज बच्चे बड़ों से बात नहीं करना पसंद करते, माँ की दोस्त आ गई बच्चे को परवाह भी नहीं है। और यकीन करें नॉर्वे में ये बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ के बच्चों में उस तरह नहीं देखा, आजी है। दुनिया के कुछ खत्ते ऐसे हैं कि जहाँ अब ये एक प्लेक आ गई कि माँ बाप की दोस्तें हैं तो बच्चियाँ पास नहीं बैठती, आ नहीं रही, बात नहीं कर रही, फ़ोन उठाए अस्सलाम वालेकुम मामी इज़ नॉट होम, खुदा हाफिज़, दरवाजे पर अम्मा घर पर नहीं है। कुछ घरों में ऐसे, सब में ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ अब कहीं ना कहीं मुसलमानों के बच्चों में दिख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को इज़ फ्रेंडली होना चाहिए, बड़ों के साथ बैठना चाहिए, इनकी महफिलें उनसे अलग और उनकी इनसे अलग नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझ पर वही की गई कि तवाज़ो इख्तियार करो, यहाँ तक कि कोई दूसरे पर ज़्यादती ना करे और ना एक दूसरे पर फ़ख्र करे। तो ये बच्चों में कब आएगा, जब आप उनके पालने के अंदर आप उनको थोड़ा सा ज़रा दबा के पालेंगे। अबू दाऊद की ये रिवायत थी 4897 नंबर की। फिर देखिए चलने का अंदाज़ सिखाया जा रहा है, बच्चे घर में हो शोर भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, नहीं वक्त सिर्फ ही मशिक, हम कहते हैं बच्चे हैं बच्चे, नहीं आगे भी आप पढ़ेंगे यहाँ भी देखिए, आवाज़ें नीची रखो, चाल हल्की रखो। क्या ये बच्चे बेचारे एक अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे ये सारी बातें सुन के जो कुरान में आ रही हैं? नहीं, जैसे उनको घड़ेंगे ना, जैसे वो कहते हैं ना रोटी को जैसे घड़े वैसे ही घड़ती है, चाल बचपन से सेट हो जाती है, बोलने का स्टाइल बचपन से सेट हो जाता है। आप दूर से खड़े चीख रहे हैं अम्मा बा फुलां भाई को बुला रहे हैं, नहीं बेटा इधर आइए करीब आके बात कीजिए, आपको इजाज़त नहीं कि आप नीचे खड़े होकर ऊपर भाई को आवाज़ दें, नेवर, यू कैन डू दिस। इस तरह से आप अपने घरों का माहौल बनाएं कि आपका घर यूज़र फ्रेंडली माहौल हो, आपके घर में कोई सो रहा है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई इबादत कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो माहौल बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। इससे फिर देखिए इनमें सुकून आएगा, वरना ये खुद ही हाइपर होकर हमें दुखी करते हैं, फिर माँ बाप परेशान होते हैं। अल्लाह ताला सबको सालेहीन कर दे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला की कायनात की कुछ निशानियों पे गौर व फिक्र। अलम तरौन अल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख़र कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल यह है कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई इल्म हो, और हिदायत हो या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब हो, कितनी सच्ची बात है। इल्म के बग़ैर पैसे करने वालों की बात है, किताब के बग़ैर दीन सीखने और सिखाने वालों की बात है। और जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो कहते हैं हम तो इस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, क्या ये इन्हीं की पैरवी करेंगे? ख्वाह शैतान इनको भड़कती हुई आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता हो। कैसा प्यारा सवाल है, करो क्या? हाईलाइट कीजिएगा, वमई युस्लिम वजहहू इलल्लाह वहुवा मुहसिन, जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन नेक भी हो, इसने फिल वाक़ एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में। थोड़ा सा अपने आप को इजी छोड़ कर कहें कि अल्लाह मैंने खुद को तेरे सुपुर्द किया। तीसरे पारे में इसी मफहूम की आयत आयतुल कुर्सी के बाद गुजरी थी, आज यहाँ फिर कबिल और वतिल उसका। ज़रा सा करके तो देखिए अल्लाह के आगे खुद को सरेंडर, सारी फ्रिक्शन ख़त्म कर दें, रेजिस्टेंस ख़त्म, मुखालफत नहीं करूँगी अल्लाह आपकी बात की, चिढ़ूंगी नहीं, पाँव नहीं पटकूँगी, बस अल्लाह आप मुझे थाम ले, मैं गिरने लगी हूँ, बोनलेस बन जाए, हड्डी बोटी के बग़ैर बन जाए, जो अल्लाह कह करूँगी, जहाँ से रोके रुकूँगी, जो कह बोलना है बोलूँगी, फिर देखिए अल्लाह आपके साथ मेरे साथ क्या मामला करता है। और नहीं करता कोई तो वह मन का फ़र फला यहज़ुन का कुफ्र हो, और अगर अब जो कोई कुफ़र करता है तो इसका कुफ़र आपको गम में मुब्तला ना करे, इनको पलट कर तो हमारी ही तरफ आना है, फिर हम इनको बता देंगे वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है, हम थोड़ी मुद्दत तक इन्हें दुनिया में मज़े करने का मौका दे रहे हैं, फिर इसके बाद इनको बेबस कर देंगे और एक सख्त अजाब की तरफ खींच लेंगे। जवानी मस्तानी 4 दिन की, दुनिया दीवानी 4 दिन की, फिर ना ख़त्म होने वाला अजाब है। कौन फ़ायदे में रहा, कौन नुकसान में रहा, हर बंदा अपने बारे में सोच ले। वाला इंसान तो मन खलक समावाती वाल अर्द, और अगर आप इनसे पूछो कि आसमानों ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह के रब होने से कोई इनकार नहीं करता, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं आसमान और ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है और आप ही आप महमूद हैं। ज़मीन में जितने दरख्त हैं वो सब के सब, पहले तो आप सोचिए ज़रा कितने दरख्त हैं, यहाँ से बाहर निकलें तो कितने दरख्त हैं, आपके यहाँ से घर के रास्ते में कितने दरख्त हैं, अब इसको ज़रा इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया के दरख्त। और मैंने कई जगहों पर जाकर देख के देखा, हर जगह के दरख्तों के पत्तों का स्टाइल फ़र्क, शेप फ़र्क। दरख्त ही एक अपनी जगह बड़ी खूबसूरत चीज़ है, फूल तो और बाद की बात है। अल्लाह ताला कहते सारे दरख्त कलम बन जाएं, पेंस, और समंदर दवात बन जाएं। इमेजिन करें कोई एक समंदर सोचें, इतनी कलमें, इतने पेन और इतनी इंक, इसी जैसे 7 मज़ीद समंदर रोशनाई मुहैया कर दें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म नहीं होंगी। लोग कहते एग्जेजुरेशन है, नऊज़ु बिल्लाह, और आपको तो वक्त के साथ अल्लाह ताला की खूबियाँ और अल्लाह ताला के कारनामे और अल्लाह ताला की इस दुनिया में जो कुदरतें हैं, ये खुल खुल के सामने आ रही हैं लोगों के, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, इसलिए नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त भी और हकीम भी है, तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा ज़िंदा करके उठा देना तो इसके लिए बस ऐसा ही है जैसे एक मुतनफ़िस को पैदा करना और ज़िंदा करना। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। असल में हमें यह सब नामुमकिन इसलिए लगता है कि हम अल्लाह की कुदरत को अपनी कोशिशों पे क्यास करते हैं, नहीं इतनी स्याही, इतने दरख्त, इतने कलम, लेकिन क्या आपको इस दुनिया में अनयूजल हद तक नाकाबिले यकीन चीज़ें नहीं नज़र आ रही? एक बच्चे का पैदा होना देख लीजिए, एक चूज़े का पैदा होना देख लीजिए, ये रात का दिन में ढलना और सितारों और सैारों को घूमना देखिए, क्या उस रब के लिए मुश्किल है कि उसकी बातों को लिखने बैठे और वाकई सारी स्याही ख़त्म हो जाए? हम कहते हैं हमारी इतनी सींग डलती है और वो पता नहीं कितने महीने चलती है, तो फिर शायद ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह इससे बहुत बड़ी ज़ात है जिसको मैं आप अपने तसव्वुर में भी ला सकें। इसीलिए अब आखिरी आयतों में कहा, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में फिर होता हुआ ले आता है और दिन को रात में, और इसने सूरज और चाँद को मुसख़र कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चले आ रहे हैं, और क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह बिमा तअमलून खबीर, कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला इससे बाखबर है। और ये सब कुछ इस वजह से कि अल्लाह ही हक है, और इसे छोड़कर जिन दूसरी चीज़ों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग व बरतर है। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी बड़ाई का एहसास दिला दे। अलम तर अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरी, ये भी तो देखिए कितनी अजीब चीज़ है, समंदरों में, दरियाओं में कश्तियों का चलना और बड़े बड़े जहाज़ों का चलना। ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला हमें मस्खूर करना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें मरूब कर रहे हैं, और अल्लाह करे हम हो जाएं। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने और शुक्र करने वाला हो। या देखिए, सब्र नहीं सब्बार और शाकिर नहीं शकूर, साबिर नहीं सब्बार और शाकिर नहीं शकूर, सुपरलेटिव दर्जा यानी हद दर्जे का साबिर और शाकिर अल्लाह ताला मुझे आपको बना दे। और कौन होता है सबूर और शकूर आपको पता है, कि जो हर हाल में राजी, जो कह दिया जो कर दिया, जो हालात हो गए चल पड़े, जम जाए तौहीद पे, जम गए अमल पे, जम गए, जिसका मिजाज बदलता ही ना रहे, मुतलविन मिजाज ना हो, नागवार हो या गवार हालात, सख्त हो या नरम, अच्छे हो या बुरे, बस अल्लाह को रब कह दिया चल पड़े। जिस बात की कमिटमेंट कर दी अब उसको निभाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैन ऑफ दी वर्ड। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसा बना दे, और ऐसा ना हो कि हम अपने आप को ज़ाया करके इस दुनिया से चले जाएं। दिस इज़ द ओनली चांस। अब लोगों की नाशुक्री, जब मुश्किलों में पड़ते हैं तो रब को याद करते हैं, और जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, व इज़ा गशी हम मौज। और जब समंदर में लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल इसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचा कर इनको खुश्की तक पहुंचा देता है तो इसमें कोई दरमियानी राह बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। इकरमा बिन अबी जहल का नाम आपने कई दफ़ा सुना है इस सफ़र में, तो अबू जहल का बेटा था, बाप की तरह इस्लाम दुश्मन था, हत्ता कि मक्का फ़तह हुआ। जब मक्का फ़तह हुआ तो इसका नाम उन लोगों में आ गया जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कह लीजिए कि वारंट जारी थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिंदा मुर्दा जो भी उनको उठा लो। तो इकरमा ने सोचा कि मक्का में रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, मैं भाग जाता हूँ। वहाँ से निकले, जिद्दा के रास्ते समंदर या में कश्ती के रास्ते चलने लगे। कश्ती चली तो पानी के बीच में आई तो समंदर में तूफान आ गया। उस दौर का रिवाज क्या था कि तूफानों में वो कहते थे कि हमारे ज़मीन के जो खुदा हैं, जो बुत हैं, ये नहीं आते, हम ऊपर वाले को पुकारेंगे। सब ने कहा, पुकारना शुरू कर दिया, ऊपर वाले हमें बचा दे, हम बच जाएंगे तो ये करेंगे वो। उस वक्त इकरमा का दिल खुल गया, कहा यही बात तो वो अल्लाह का बंदा कहता है, और सारी बात है कि जो इस पानी में हमें बचाने नहीं आते वो खुश्की में कहाँ करते होंगे। वहाँ इनके दिल में तौहीद की एक शम्मा उभरी कि अल्लाह अगर आज वाकई मैं बच गया तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, पीछे ही जाऊँगा। अल्लाह के हुक्म से समंदर में तूफान थमा, ये वापस आए, इनकी बीवी लेकर इनको अल्लाह के नबी के पास आई और इस्लाम कबूल किया और बच गए। उन्हीं की बातें हैं ये सारी। दुआ करें कोई सानहा, कोई हादसा अगर हमारी ज़िंदगी में आया है, और अल्लाह ना करे अगर आगे आए, तो वो हमें अल्लाह की तरफ ले आए। ये ना कि तकलीफ़ों से भी हमें खैर ना मिले, उधर से भी हम दवाइयाँ फांक फूँक के दुनिया से चले जाएँ, और उधर ही हम दुनिया के अंदर लोगों को दुख अपने गम सुना के रो रो के चले जाएँ। या अय्युहन्नास सुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही। लोगो, बचो अपने रब के गज़ब से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला न देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। दुनिया में यही दो रिश्ते होते हैं ना, जो मुश्किलों में सबसे पहले एक दूसरे की मदद करते हैं। फिल वाक़ अल्लाह का वादा सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बस दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखे में डाले। कौन? शैतान का एक नाम है अलगरूर, जैसे अल्लाह ताला का नाम है ना अलवदूद अलगफूर अलरहीम अलरहमान, तो शैतान का नाम अलगरूर, धोखे वाला, चीटर, धोखे भी देता है और धोखे में आता भी, खुद भी धोखे में जी रहा है और बंदों को भी देता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, ये पांच चीज़ें हैं जिसका अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है। कौन सा? इस खड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वो बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है, और कोई नफ्स नहीं जानता कल वो क्या कमाई करने वाला है, और न किसी शख्स को ये ख़बर है कि किस सरजमीन में इसको मौत आनी है। अल्लाह ताला ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। तो इतनी बड़ी हस्ती जिसको इतना कुछ पता है, तुम उससे डर जाओ। तो ये थी सूरत लुकमान, जो आपको मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। और हकीकत यह है कि अगर मैं आप अल्लाह की कायनात पे गौर करने वाले हों, मैं युस्लिम बच्चू पे अमल कर लें, फ़कद इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्का की नवीद पा लें, तो हमारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हो जाएँ, हम कुफर से बच जाएँ, नाशुक्रियों से बच जाएँ। लेकिन क्या करा जाए इस इंसान का कि जो सब कुछ देखते सुनते भोला बन जाता है, फिर वो अल्लाह ताला पे नज़रें नहीं लगाता और अल्लाह ताला के ऊपर उसकी नज़र नहीं है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं।